ओम गणपते। तो विषय है नैतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। समाज में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो नैतिक जीवन है, अर्थात जिस जीवन को हम उचित कहते हैं या जिस जीने के तरीके को हम उचित कहते हैं, उसी को ही हम धर्म भी समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि हम धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसीलिए ये विषय थोड़ा गंभीर है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जीवन है और जो नैतिक जीवन है, इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो कहीं हमको ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हम धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए ये बात थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि नैतिक जीवन क्या होता है और आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले विवेक के बारे में सुना, हम लोग विवेक को क्या समझते होंगे, लेकिन शास्त्रों के आधार पर जब उसका विवेचन किया गया तो पता लगा विवेक तो कोई और चीज। तो सबसे पहले हम ये देखें कि साधारण रूप में हम किसको नैतिक जीवन कहते हैं। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं, किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछो तो वो तुरंत निर्णय दे देगा कि तुम्हारा व्यवहार ठीक है या गलत है। चाहे वो भाई बहन की बात हो, दोनों के एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे संतान और माता पिता के बीच की बात हो, चाहे हम जहां सर्विस कर रहे हैं या हम बिजनेस कर रहे हों, तो जो मालिक है और जो ग्राहक है उसके बीच में जो व्यवहार चल रहा है उसके बारे में भी हम ठीक ठीक निर्णय दे देते हैं कि ये व्यवहार ठीक है या गलत है। यदि ठीक है तब कहते हैं कि ये आदमी नैतिक है, और हमारे मापदंड के अनुसार यदि वो ठीक नहीं है तब ये कह देते हैं कि ये अनैतिक है। तो एक तो साधारण रूप में सामाजिक तरीके से नैतिकता की परिभाषा होती है, और दूसरी नैतिकता किस रूप में देखते हैं, हमारा एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, देश उसके अनुसार चलता है। तो उस कानून के अनुसार यदि हम चलते हैं तब हम कहते हैं कि हम नैतिक हैं, और उस कानून का उल्लंघन करते हैं तब हम कह देते हैं कि हम अनैतिक हैं। हमारी परिभाषाएं, हमारे स्वभाव और हमारी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बदलती रहती है, तो इसीलिए इस बात का ठीक ठीक निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे कि महाराज जी ने संतविलास ग्रंथ में जब पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म लिखा तो उन्होंने साफ कह दिया वहां पर कि पति की उचित आज्ञा पालन करना स्त्री का कर्तव्य है। लेकिन कोई पति इस परिभाषा को स्वीकार करेगा? वो तो यही परिभाषा करेगा कि पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञा का पालन करना। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। एक ऋषि तो ये कह रहा है कि पति की उचित आज्ञा का पालन करना पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी का धर्म है, लेकिन पति कहता है कि पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। कितना बड़ा अंतर इन दो चीजों। तो मेरा स्वभाव जैसा है उसके अनुसार मैं परिभाषा ही बना लेता हूं नैतिकता की। जो परिभाषा मुझको फिट बैठती है वैसी परिभाषा मैं गढ़ लेता हूं। तो इसीलिए नैतिकता संत लोग किसको कहते हैं वो समझना पड़े। ये नैतिक जीवन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो एक तो जो सांसारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, इसमें तो ज्यादा कोई सीखने की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जानता है क्या ठीक है क्या गलत। आप यदि किसी को गलत करता हुआ देखते हो, परिवार में कोई गलत व्यवहार ही कर रहा है, आपका कोई संबंध नहीं है उससे, आप दो मिनट में निर्णय कर लेते हो कि ये जो व्यवहार कर रहा है ये ठीक नहीं। ईश्वर ने आपको खुद ही वो समझ दे रखी है क्या ठीक है क्या गलत है। साधारण रूप में हर व्यक्ति जानता है, समाज में भी और परिवार में। लेकिन सत्पुरुष जो नैतिकता की बात करते हैं वो किसी दूसरे अर्थ में करते हैं। नैतिकता का संबंध आध्यात्मिक जीवन से, नैतिकता का संबंध ईश्वर के साथ। यदि ईश्वर के साथ ना होता, किसी देश के साथ होता, किसी समाज के साथ होता, किसी गृहस्थ के साथ होता, तो जैसे मान लिया आज चाइना है, वहां के लोग भारत के बारे में जो भी धारणा रखते हैं उनका एक ही दृष्टिकोण है कि हमने पड़ोसी को दबा कर रखना है ताकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हम कर सकें। आज जो संसार में जो वातावरण चल रहा है वो यही तो चल रहा है। हर देश अपने आप को नैतिक कहता है, दूसरे को अनैतिक सिद्ध करता है, जबकि हम जैसे लोग जिनका वहां इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, जिनको उनका बंधन कोई नहीं है, वो ठीक ठीक निर्णय कर देते हैं। देखो भाई यहां पर अमेरिका गलत है, यहां पर रूस ठीक है, इस बात में रूस गलत है अमेरिका ठीक है। तो वो देश जो है स्वार्थ में आकर अपने को नैतिक कह रहे हैं, दूसरे को अनैतिक कह रहे हैं। लेकिन हम जो दृष्टा बनकर देख रहे हैं, हम निर्णय कर देते हैं जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता कि ये ठीक है और ये गलत। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल बुद्धि हर मनुष्य को ईश्वर ने दे रखी है कि वो स्थिति देख के साफ निर्णय कर लेता है ये ठीक है यह गलत। लेकिन सत्संग में संसारी बातें नहीं होती, सत्संग का संबंध ही सत से होता है और सत का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर उसे कहते हैं जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन संभव नहीं और वो शांत रूप है, आनंद रूप, वो ज्ञान रूप, वो जीवन रूप। उसी ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए मेरा जो ये गृहस्थ जीवन है या सामाजिक जीवन है ये जब तक शुद्ध नहीं होगा, उसी शुद्ध का नाम है नैतिकता। जब तक मेरा जो सामाजिक जीवन है या गृहस्थ जीवन है जब तक वो नैतिक नहीं होगा, मेरी ईश्वर भक्ति, मेरा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो ही नहीं सकता। यह असंभव बात है। जब तक मेरा जीवन, दैनिक जीवन, रोजाना का जीवन नैतिक नहीं है तब तक मेरा आध्यात्मिक जीवन कभी भी शुरू भी नहीं हो सकता। लेकिन यदि समाज में हम धर्म के ठेकेदारों को देखें या जो संप्रदायवाद है, वो संप्रदायवाद हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, जैनियों में भी है, ईसाइयों में भी है, जो भी संप्रदाय है या जो भी अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं या धार्मिक कहते हैं, तो उनके कुछ कायदे कानून होते हैं उनकी सोसाइटी के, उसके अनुसार वो चलते हैं। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि इस संसार में जो भी धार्मिक संस्था बनती है या यूं कहें किसी भी संप्रदाय की स्थापना होती है, विशेष धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वहां झगड़े भी होते हैं, वहां मनमुटाव भी होता है। अभी बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो उसके कर्ता धर्ता है। तो संसार में जो भी चीज बनती है आप देखिए उसके बिगड़ने के रास्ते उसके अंदर से ही शुरू हो जाते हैं। तो धार्मिक चीज बनी है भाई, धर्म को फैलाने के लिए बनी है, फिर हो क्या रहा है, उसके अंदर से ही बिगाड़ कैसे शुरू हो जाता है। कारण यह है कि हमारी जो नैतिकता है वो सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं होती, वो हमारी अपनी मान्यताएं हैं जिसके आधार पर उस नैतिकता को हम मानते हैं। तो इसीलिए यदि आप सामाजिक तरीके से इन बातों का निर्णय करने लगे तो ये झगड़े कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जैसे कि अपने देश का हालत है ऐसे ही सारी दुनिया की हालत है। आप देखते हैं कि सारी दुनिया में हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर झगड़े होते रहते हैं, और इसके बाद नंबर आता है जातियों के नाम पर झगड़े होते रहते हैं। तो सारा समुदाय पूरे विश्व में, ऐसा मत समझिए भारत में, पूरे विश्व में यही हालात है। और यदि किसी साधारण से विद्यार्थी से भी पूछ लो आप, कहो तो भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कहेगा भाई हम सब मानव हैं, इसमें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। तो आम बुद्धि से ये बात समझ में आ जाती है कि रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अनैतिक हैं इसीलिए कुछ लोगों को दबाकर रखते हैं, और अच्छे दिन तो सभी के आते हैं। तो जब वक्त पलटता है तो जिन्होंने दबाया था सरकार उनके अगेंस्ट में हो जाती है, जो दबाए गए थे सरकार उनके फेवर में हो जाती है। सरकार कहती है कि इनको दबा के रखा गया था, इनका काफी नुकसान हो चुका है, अब इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। तो एक परिस्थिति में जो चीज नैतिक थी वो अनैतिक हो गई, जो अनैतिक थी वो नैतिक हो गई। तो इसीलिए सामाजिक तरीके से इन चीजों की परिभाषा कभी संभव है ही नहीं। तो नैतिकता क्या है ये आपको अध्यात्म के रास्ते से ही समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि नैतिकता का मतलब ही एक होता है कि वो व्यक्ति ईश्वर मार्ग में चलने में सफल हो जाए, ईश्वर की भक्ति करने में वो सफल हो जाए। इसीलिए नैतिकता उसकी मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए कोई करप्ट आदमी, कोई शैतान आदमी, कोई बेईमान आदमी यदि भक्ति करने चले तो भक्ति उसकी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले उसको नैतिक होना ही पड़ेगा। इस प्रकाश में मैं एक वचन केवल महाराज जी का पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। महाराज जी ने एक चैप्टर लिखा है ग्रंथ श्री संता विलास में, आत्मिक व सामाजिक उन्नति के निर्मल नियम। इसका एक 20वां वचन है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। यहां से आपको इस निर्णय का बोध हो जाएगा। जो जीव तमाम जरूरतों की मर्यादा को धारण करने वाला है, जो जीव तमाम जरूरतों की मर्यादा को धारण करने वाला है यानी सादगी का अनुयायी है, और जो कपट और छल को त्याग करके सत्यवादी होने का यत्न करता है और तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को जो हृदय में दृढ़ करता है यानी सत्संग के सही स्वरूप को जो धारण करता है, और तन मन धन से जो अपना फर्ज समझकर दूसरे की कल्याण चाहने वाला है यानी सत सेवा को धारण करके सेवक रूप होने का यत्न करता है और एक प्रभु का पूर्ण विश्वासी होकर सत उपदेश द्वारा प्रभु चिंतन में बुद्धि को स्थिर करता है। ऐसा सदाचारी पुरुष अपने जीवन की उन्नति करने वाला संगत और देश के वास्ते एक अधिक भूषण है। इस वास्ते अपने आचरण को पवित्र करते हुए तमाम संगत दूसरों की उन्नति में अपना जीवन पेश करे। ऐसी साधना ही सर्वकाल आनंद के देने वाली है और जीवन की सार है, क्योंकि सर्वस्वरूप एक आत्मा ही है और सर्वजीव शांति के चाहने वाले हैं। इस वास्ते सही समता के भाव को समझकर अपने जीवन को पूर्ण निश्चय से ईश्वर परायण बनाकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इस साधन से सामाजिक उन्नति, देश की जागृति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब ऐसा निर्विकारी और परोपकारी जीवन दृढ़ हो जावे, तब जगत से वैराग्य को प्राप्त करके बुद्धि सत सिमरण द्वारा परम पद आत्मा में लीन हो जाती है, जो अवस्था परम धाम है। मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है नैतिक जीवन से और इसका अंत होता है मोक्ष से या परम पद की प्राप्ति से। तो मेरा जो रोजाना का जो पारिवारिक व्यवहार है, समाज में जो व्यवहार है, इसका मेरे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। तो इसीलिए यदि हम में से किसी ने भी नैतिक बनना है तो उसके लिए पहली बात, सबसे पहली बात ऋषि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो जीव तमाम जरूरतों की मर्यादा को धारण करने वाला है, यानी सादगी का अनुयायी है। हम समाज में जानते हैं पैसा कमाने के लिए कितना कपट और छल करते हम सब जानते हैं, चाहे सर्विस करते हो चाहे बिजनेस करते हो। परिवार में भी भाई बहन के साथ, परिवार के जो प्रिय लोग हैं उन्हीं के साथ छल कपट करते, पत्नी पति के साथ करती है, पति पत्नी के साथ करता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमको अपनी जरूरतों पर रुकने की या टिकने की आदत नहीं, हम जरूरतों पर नहीं टिकते, हम इच्छाओं पर टिकते हैं। और हम सब जानते हैं कि इच्छाएं, जैसे जैसे आपका जीवन आगे एडवांस करता है, इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है। यदि इसका सीधा सा एग्जाम्पल देखना हो, आप सब बैठे हैं, जब आपकी 10-15 वर्ष की आयु रही होगी आपको अच्छी तरह पता होगा उस समय क्या इच्छाएं थी, और तब से लेके आज तक कितनी इच्छाएं आपकी बढ़ चुकी हैं, ये भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ये खुद ही तो देख रहे हैं आप जानते हैं। तो मेरी जो इच्छाएं बढ़ी हैं, इसी ने मुझको अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर किया। संतान का माता के, माता पिता के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, सब जानते हैं। लेकिन समाज में कितनी अनैतिकता है, हम रात दिन सोसाइटी में देखते, रात दिन। साधारण सा एक शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, हर परिवार में घटना घटती है, लेकिन कितनी परेशानियां होती हैं। हर माता पिता जानता है कि बच्चे की शादी करनी है तो कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना बड़ा बोझ है। तो जिस समाज में जो कार्यक्रम हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता, उसमें इतनी चिंता फिक्र, सोचना पड़ता है माता पिता को कम से कम 20-25 वर्ष मैंने कुछ जोड़ना है, बच्चे की शादी करनी, तो जब इतना प्रेशर आपके ऊपर शादी का पड़ता है तो बताइए ये कार्यक्रम अनैतिक हुआ या नैतिक हुआ, और इसमें कौन कौन लोग शामिल है। और इसको हम जब मेरा नंबर आता है तो मैं उसका जस्टिफिकेशन दे देता हूं, क्या देता हूं कि भाई मैंने बेटी की शादी की थी तो बड़ा देना पड़ा था, अब बेटी की शादी कर रहा हूं वसूल तो करना ही है मैंने, तो मैं अनैतिक जीवन दूसरों का देखकर खुद भी अनैतिक बन जाता हूं बड़े आराम से। अनैतिक बनने के बाद भी मैं अपने आप को अनैतिक समझता नहीं, ये मेरी जिंदगी की पिक्चर है, इस तरह से मैं जीता हूं हर मामले में यही। तो कौन बचाएगा, कौन सिखाएगा? यदि कोई सिखा सकता है तो केवल एक आदमी है। आदमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने में वो आदमी है जिसको हम गुरु कह देते हैं या अवतार कह देते हैं, वो ही सिखा सकता है। संसार में तो हम देखा देखिए अब अनैतिक बनी रहे, सारा का सारा संसार बिगड़ेगा। यदि ये संसार नहीं बिगड़ता तो आपकी धरती का पानी नहीं बिगड़ता, आपकी धरती की हवा नहीं बिगड़ती। मनुष्यों का आपस में इतना जो ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया है, इतनी नफरत आपस में हो गई है, ये नहीं बढ़ता। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये नैतिकता का संबंध सीधा सीधा ईश्वर के साथ। इसीलिए महाराज जी ने ये पांच नियम लिखे। पांच नियम में जो पहला नियम सादगी है, उसका मतलब ही है, जिसको महाराज जी ने थोड़े से शब्दों में कह दिया कि जो जीव तमाम जरूरतों की मर्यादा को धारण करने वाला है। खाने के लिए सामग्री चाहिए कोई बात नहीं, तेरी नीड है। पहनने के लिए देश काल के अनुसार वस्त्र चाहिए, वो तेरी नीड है। रहने के लिए जगह चाहिए, वो तेरी नीड है। लेकिन क्या हम इस पर टिकते हैं? सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, नकल कर करके आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा बजट कहां पहुंच जाता है? फिर बेईमानियां शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यदि मैंने होश में जीना है, नैतिक जीवन व्यतीत करना है, तो मैंने अपनी इच्छाओं को मर्यादा में लाना ही होगा। जरूरतें मेरी पूरी हो जाए, लेकिन इच्छाओं के बंधन में मैं ना फंसूं। चाहे एक कपड़े का यह मामला क्यों ना हो, यदि इस बात का निर्णय करना हो कि आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है, हर व्यक्ति निर्णय कर सकता है कितने वस्त्रों की जरूरत होती है और कितने वस्त्र में देखा देखी करके इकट्ठे करता है, सबको पता है। तो मैं मर्यादा का जीवन ना खाने में व्यतीत करता, ना पहनने में व्यतीत करता, ना एक दूसरे के साथ व्यवहार में व्यतीत करता, ना बोलचाल में व्यतीत करता। हर चीज मेरी बिगड़ी हुई। इसलिए सब कुछ कह रहे हैं कि जीव तमाम जरूरतों की मर्यादा को धारण करने वाला है, यानी सादगी का अनुयायी है, और जो कपट और छल को त्याग करके सत्यवादी होने का यत्न करता है। दूसरी जरूरत करें, कपट और छल को त्याग करके सत्यवादी होने का प्रयत्न करता है। तो कौन कर सकता है? बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जिसकी जरूरतें कम होंगी, जो कम खर्चे में गुजारा करना सीख जाता है, वही व्यक्ति सत्यवादी भी हो सकता है। जिसको बहुत चाहिए वो कहीं ना कहीं हेराफेरी करेगा। इसलिए समाज में, क्योंकि फैशन बढ़ रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं, देखा देखी सामान बढ़ रहा है, उसके लिए बजट मोटा चाहिए, तो गुजारा नहीं चलता, बेईमानी होता रहते हैं। ईश्वर का विश्वास नहीं, क्योंकि वो मार्ग ही नहीं पकड़ा हमने। तो इसीलिए ये दूसरी बात भी हमारे जीवन में नहीं आ पाती, जिसको महाराज कहते हैं सत्य का पालन। और तीसरी बात वो कहते हैं कि तन मन धन से जो अपना फर्ज समझकर दूसरे की कल्याण चाहने वाला है। देखिए सेवा का मतलब क्या होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, मान लिया हम उसको सेवा मान लें एक बार, तो माता पिता के पिता के मन में क्या रहता है कि मेरे बच्चे की लाइफ सफल हो जाए, उसको कल्याण कह देते हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि में कल्याण दूसरी चीज। वो कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर ऐसी ठंडक आ जाए कि जो चिंता फिक्र है एक निश्चय की हालत है, जो दुख है मानसिक क्लेश है इनसे मुक्त हो जाए, कल्याण उसका नाम है। बड़ा अमीर आदमी है लेकिन मानसिक बेचैनी से मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि कई बार तो गरीब से ज्यादा अमीर लोग मानसिक बेचैनी करते हैं। तो इसीलिए जो तन मन धन का त्याग करता है फर्ज समझकर, किस वास्ते कि जो अन्य लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, बेसिक एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते, तन पे कपड़ा भी ठीक प्रकार से नहीं होता, खाने के लिए सामग्री नहीं होती, दुखी जीव, तो उनके पर उन पर मेरी दृष्टि होनी चाहिए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। भावना जीने की है, ये नैतिकता है, याद रखिए। महाजी कहते हैं प्रेमी तेरे सामने यदि कोई जरूरतमंद आ जाता है और तू उससे निगाह चुरा लेता है तो कहते हैं ये अनुचित है, ये अनैतिक है। क्योंकि ईश्वर का हुक्म है तेरे आगे यदि उसने किसी को भेजा है जरूरतमंद को, तो तेरी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उसका दुख दूर करने की जरूर कोशिश कर, ये नैतिकता है। इसलिए बिना सेवा का ये कैसे होगा। इसलिए जीवन में ये भावना रखने के बजाय कि लोग मुझको पूछें मेरे लिए कुछ करें, चाहे परिवार के लोग हों चाहे समाज के लोग हों, उल्टी दिशा होनी चाहिए कि मैं लोगों के लिए, चाहे परिवार के लोग हों या समाज के लोग हों, मैं उनके लिए किस काम आ सकता हूं, क्या कर सकता हूं। ये जीने का तरीका है, सोच का तरीका। चौथी बात वो कह रहे हैं तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को जो हृदय में दृढ़ करता है, यानी सत्संग के सही स्वरूप को जो धारण करता है, यह है सत्संग। तमाम सत्पुरुषों को, चाहे किसी भी देश में सत्पुरुष हुआ, सत्पुरुष ना हिंदू होता ना मुसलमान होता ना सिख होता ना ईसाई होता, क्योंकि सत्पुरुष का मतलब ही होता है वह पुरुष जो सत में स्थित है, या यूं कहने कि जो जीव ईश्वर में स्थित है, और जो जीव ईश्वर में स्थित होता है उसको ईश्वर कहते हैं, उसको जीव नहीं कहते। तो जितने भी सत्पुरुष हैं यदि कहा जाए सही रूप में, तो दुनिया में केवल एक सत्पुरुष होता है। महर्षि रमण ने ठीक कहा कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। सत्पुरुष परमेश्वर होता है, इसलिए वो केवल एक है, ना वो मंगत है ना वो कबीर है, वो ईश्वर है। ये जो वाणी है, ये जो वचन है, ये उस ईश्वर के वचन है, इसमें किसी व्यक्ति की स्टैंप नहीं लगाई सकते। तो ये यूनिवर्सल वचन होते हैं, सबके लिए समान होते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को जो हृदय में दृढ़ करता है। देखो महाराज जी ने एक वचन लिखा इसी चैप्टर में, वहां वो लिखते हैं यदि कोई प्रेमी का मतलब जो संगत के लोग हैं जो महाराज जी को मानते हैं या उनके नाम से इकट्ठे होते हैं उनसे सीखते हैं, यदि कोई प्रेमी अपने मार्ग से पतित हो जाए तो उससे इंतहा दर्जे का प्रेम करना चाहिए। देखिए गुरु क्या कहते हैं, यदि कोई जीव अपने मार्ग से पतित हो जावे तो उससे इंतहा दर्जे का प्रेम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? वो कहते हैं उस प्रेम के बल पर उसके अंदर जब परिवर्तन आएगा तो वो पहले से अधिक सेवा करने वाला। प्रेम में वो ताकत है कि मनुष्य के अंतःकरण को ही बदल देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि किसी का जरा भी पतन हुआ सबसे पहले उसे नफरत करते हैं, 10 लोगों ने उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं, उसके अंदर दोष दर्शन करते हैं। लेकिन गुरु के पास जब ऐसा शिष्य जाता है तो गुरु क्या कहता है, देखिए महाराज जी के पास उनके एक प्रेमी गए जगाधरी में जब सम्मेलन हो रहा था तो एक डॉक्टर साहब थे, वो विदेश से एक टेंट लेके आए थे, उन्होंने टेंट लगा के उसमें ठहर गए। उस प्रेमी ने देखा कि यहां तो समता है, महाराज जी क्योंकि मौजूद थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। वो शिकायत लेके पहुंच गया, अपनी टीम बनाई उसने, लोगों को कन्विंस किया, महाराज जी के पास पहुंच गए। फिर महाराज जी से कहता है कि महाराज जी आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो तो अपने स्पेशल टेंट में ठहरे हुए हैं और हम लोग साधारण टेंट में ठहरे हुए। जो उसने तर्क पेश किया महाराज जी ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके प्रेमी बात वाले बिल्कुल ठीक, तर्क नहीं काटा उसका उन्होंने। देखिए एक बात कही उनसे, उसके बाद उन्होंने देखिए गुरु का वो देखिए दृष्टिकोण क्या शिष्य को देना चाहता है। बोला प्रेमी तुम तो यहां इनके वास्ते आए हो जो सारी रात तारों के नीचे बिता देते हैं, धरती पर बिछौना भी नहीं बिछाते। महाजी रात को निकल जाते थे कहीं खेत में बैठ जाते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, सारी रात उस शिष्य की याद में बिता देते थे। तो प्रेमी तुम जिनके वास्ते आए हो वो तो सारी रात तारों के तले बिता देते हैं। बस महाजी ने इतना ही कहा, उस प्रेमी की आंखों से आंसू निकलने लगे, समझ आ गई मैंने क्या गलती कर। अरे तूने तो सही रास्ते पे चलना था, तू किसकी नकल कर रहा है? तो दोनों चीजें मौजूद है वहां पर, अनैतिकता भी मौजूद है और गुरु का जीवन भी मौजूद है। अब तेरे ऊपर निर्भर करता है, तू मन में अनैतिकता तो रख के डिस्कशन करता रहे, अपनी जिंदगी खराब कर ले, या गुरु की तरफ देखता रहे। तो गुरु क्या कह रहा है, गुरु कह रहा है तमाम सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को जो हृदय में दृढ़ करता है, यानी सत्संग का के सही स्वरूप को जो धारण करता है, यह है सत्संग। तो सत्पुरुषों का जिसको हमने गुरु बनाया उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो लिखकर क्या दे रहा है और शिष्यों से कह क्या रहा है। मैंने यदि यहां आया था गुरु की संगत में तो मैंने गुरु को देखना था, आगे बढ़ना था, मैं कहां चला गया, किनकी नकल कर रहा हूं, कौन सा ग्रुप मैंने तैयार कर लिया। बात मैं नैतिकता की करता हूं लेकिन जीवन मेरा अनैतिक है। गुरु की संगत में आकर मैंने ऊंचा जीवन व्यतीत करना था, गुरु के आदर्श को धारण करना था, मैं क्या कर रहा हूं। तो इसीलिए ये सारी बातों पे जो ध्यान देता है, जो सादगी का अनुयायी है, जो सत्यवादी है और जिसने सेवा भाव है, ये तीन चीजें व्यक्ति को नैतिक बनाती हैं। कब नैतिक बनाती हैं? जब चौथी चीज उसके पास होती है, सत्संग उसके पास होता है। क्योंकि सत्संग ही सिखाएगा कि क्या नैतिकता है और क्या अनैतिकता है। और सत्संग किसका? सत्पुरुषों का। इसी भाई कहते सत्संग जहां हो वहां सत्पुरुषों के जीवन के बारे में बातचीत होनी चाहिए, वहां ईश्वर के बारे में बातचीत होनी चाहिए, उस ईश्वर तक कैसे पहुंचे इसका मार्गदर्शन होना चाहिए, वही तो सत्संग है। वहां बिगाड़ की गुंजाइश कहां है, लड़ाई झगड़े की गुंजाइश वहां कोई नहीं। तो सत्संग से समाज की मर्यादा कायम रहती है, सत्संग से समाज की नैतिकता कायम रहती है, सत्संग के बिना समाज कभी भी नैतिक नहीं हो सकता, याद रखिए। वो हमारी जो गढ़ी हुई परिभाषा है नैतिकता की वही लागू होंगी उन पर, जो सही परिभाषा शास्त्र के वो नैतिकता की कभी समाज पर लागू नहीं होगी। इसीलिए देखिए महात्मा गांधी इसी देश में हुए, उनका आजादी का आंदोलन देखिए आप, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने हिला के रख दिया। जो उनकी भाषा नहीं जानते थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे, जिस राज्य में वो जा ही नहीं पाए वो भी उनको सपोर्ट करते थे। लेकिन महात्मा गांधी का व्यक्तिगत जीवन देखिए तो, उनकी ऑटोबायोग्राफी सत्य की खोज पढ़कर देखिए जरा, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा ये बात कि मैंने आजादी प्राप्त करने के लिए ये युद्ध किया या ये आंदोलन किया। उन्होंने यही बात कही है, मैंने सत्य की खोज के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए ये कार्य किया। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा जो चरित्र देश का तैयार हुआ, उसमें कितने कितने ईमानदार लोग थे जरा विचार करके देखिए। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या जीवन था उनका, जो रियल भक्त होता है वो उनका जीवन। उस वक्त के लोगों को आप देखिए, लोकमान्य तिलक, क्या उनका जीवन था। एक आजकल के नेता हैं, देखो ये भी जीवन देखो। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था जब आजादी मिल गई, उन्होंने कहा अब इस कांग्रेस को खत्म कर दो। इसका मतलब उनका जो आंदोलन था वो नैतिक आंदोलन था, वो आध्यात्मिक आंदोलन था, वो निष्काम सेवा वाला आंदोलन था, उसके पीछे स्वार्थ दूर दूर तक नहीं था। इसीलिए उनके लिए हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन हम लोग हर मामले में भेदभाव करते हैं, हमको होश ही नहीं होता, हमको यह भी नहीं पता कि हिंदू क्या होता है। हिंदू वो होता है जो सनातन धर्म का पालन करता है, और सनातन कहते हैं इटर्नल को, एंडलेस। तो एंडलेस धर्म वही तो हो सकता है जो सारी दुनिया में एक ही हो, पूरी दुनिया में एक ही धर्म वही एंडलेस होता है, वही सनातन हो सकता है। लेकिन जो हिंदू आजकल के क्या कहते हैं, वो हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, तुम ये मानो वो मानो, पहले ही इसको खंडन कर दिया, कहां सनातन रहा, उसको सीमा में बांध दिया, वो सनातन कहां रहा, फिर वो तो सीमित हो गया। और जिस प्रकार तालाब का सीमित पानी सड़ जाता है, उस प्रकार धर्म भी सड़ जाता है। जो धर्म सीमित हो गया वो सड़ नहीं सड़ना है, जो संगत सीमित हो गई उसने भी बिगड़ना ही बिगड़ना। इसलिए महाजी ने क्या कहा, सारे जगत को संगत समतावाद जाने। देखिए ये गुरु की परिभाषा, ये गुरु की परिभाषा, गुरु खुद लिमिटलेस है, असीमित है, सर्वव्यापक है, वो चेतन सत्ता है, सारी दुनिया की रक्षा कर रही है, वो भेदभाव कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने ऐसे गुरु को जीवन में धारण किया, उसका चेला कहता हूं मैं अपने आप को, और मेरी कितनी सीमाएं हैं कि अपनी ही संगत के अंदर मैं बाउंड्रीज खड़ी कर लेता हूं, मुझे होश ही नहीं आती, फिर भी कहता हूं मैं ठीक कर रहा हूं, अपनी अनित्यता की, अनैतिकता की ओर से ख्याल ही नहीं जाता। इस प्रकार ये जो बाहर का जो जीवन है ये नैतिक कभी नहीं हो सकता जब तक कि आप उस जीवन को ईश्वर पर आधारित ना बनाए। अर्थात वो जो नैतिकता है ईश्वर प्राप्ति के लिए धारण किए आपने। इसलिए मां जी अगली बात कर रहे हैं कि एक प्रभु का पूर्ण विश्वासी होकर सत उपदेश द्वारा प्रभु चिंतन में बुद्धि को जो स्थिर करता है, ऐसा सदाचारी पुरुष अपने जीवन की उन्नति करने वाला संगत और देश के वास्ते एक अधिक भूषण है। संगत और देश के वास्ते वो एक अधिक भूषण है। अरे गुट तैयार नहीं किए आते महाराज जी, व्यक्तिगत जीवन पर जोर देते थे, प्रेमी तेरा अपना जीवन ही यदि सदाचारी नहीं बना तो क्या किसी को तू प्रेरणा दे सकता है, भाषण तो तू सुना सकता है लेकिन प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए यदि किसी एक प्रेमी भी अपना जीवन गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार तैयार करता है, वो देश का बहुत बड़ा कल्याण करता है, चाहे वो किसी के संपर्क में आए चाहे ना आए। हम जैसा जीवन जीते हैं, एक दिन आसपास वालों को या एक दूसरे के द्वारा पता लग ही जाता है कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसा आदमी भी रहता है जिसका जीवन ऐसा, खानदान में भी पता लग जाता है। तीन तीन पीढ़ी तक लोग नाम लेते रहते हैं कि भाई हमारे जो दादा थे वो बड़े अच्छे थे, उनका ऐसा जीवन था। तो जीवन बोलता है, इसलिए महाजी ने कहीं इस तालीम को फैलाने की ऐसी बात नहीं करी कि इसका एडवर्टाइजमेंट करना। उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रेमी अपना जीवन सदाचारी बनाने की कोशिश कर, यदि तुमने सदाचारी बना लिया तो सबसे पहली खुशबू तुम्हारे अंदर आएगी, सबसे पहली ठंडक तुमको मिलेगी, सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर ये विश्वास आएगा जैसा कि वाणी कह रही है कि अंतर्यामी सकल स्वामी नित अंतर करे विश्राम, तिसका सिमरन सार है सत है जिसका नाम। उस अंतर्यामी ईश्वर का नाम सत है, इसीलिए मैं बाहर उपासना नहीं करता, जब मेरी बुद्धि में विवेक आता है तो मैं अंदर उपासना क्या करता। इसलिए मां जी जीव की बात करते हैं, मनुष्य की बात नहीं करते, क्योंकि जीव वो है जो इस देह का मालिक है, जीव वो है जो अपने मन का मालिक है। मन सूक्ष्म शरीर है, ये देह स्थूल शरीर है। मैं शरीर के लिए नहीं जीता, याद रखिए, मैं मन के लिए जीता हूं। इसीलिए कई बार जब मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो मैं सुसाइड कर लेता, घर छोड़कर चला जाता, क्योंकि मैं देह के लिए नहीं जीता, मैं मन के लिए जीता। मन सूक्ष्म शरीर है, वो मेरा है। इसी प्रकार अंतर्यामी जो प्रभु है ना, वो भी मेरा है। मन के अंदर बेचैनी है, मन मुझको बेचैनी में फंसा देता है, मुसीबतों में फंसा देता है, प्रभु सारी मुसीबतों से मुझको मुक्त कर देता है, शांति प्रदान करता है, मौन प्रदान करता है। कैसा मौन? मौन होकर मैं संसार में परम सुखी, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। जिसका मन मौन हो गया उसको दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, उसके लिए संसार का सुख जहर के समान होता है। तो आध्यात्मिक जीवन अंदर की चीज है, ये मन को बाहर फैलाने की चीज नहीं है, ये मन को अंदर सिकोड़ने की चीज है। क्यों सिकोड़ा जाता है? ताकि मन संसार की याद करना छोड़कर ईश्वर की याद करने में रस लेने लगे। जिसका मन ईश्वर की याद में रस लेने लगता है, याद रखिए कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। उसके जीवन में नैतिकता ऑटोमेटिकली होगी, देखने में आएगी, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं, उसको नियम कायदे कानून याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा का पूरा जीवन नैतिक होता ही है। ठीक उसी प्रकार नैतिक होता है जैसे कि किसी गिलास के अंदर नमकीन पानी हो तो किसी कोने से भी छूओगे वो पता लग जाएगा इसमें नमक है। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को जब देखोगे, किसी भी कोण से देखोगे, उसको पता लग जाएगा कि इसका जीवन नैतिक है। इसीलिए हम याद रखें कि यदि मेरे जीवन का आधार ईश्वर नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर नहीं, मेरा जीवन नैतिक नहीं हो सकता। और यदि मेरे अंदर तड़प है ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर भक्ति की, तो फिर मुझको नैतिक जीवन बनाना ही पड़ेगा। इस कंफ्यूजन में ना रहें कि संसार में जैसे मन चाहे मैं जीता रहूं, जैसे मन चाहे व्यवहार करता रहूं, और अंदर मैं ईश्वर में, ईश्वर प्रेम में सफलता भी प्राप्त कर लूंगा, ईश्वर भक्ति में सफल भी जाऊंगा। ये दो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए महाराजी ने ये पांच नियम लिखे ताकि इसके अनुसार जीवन बनाकर मैं सामाजिक दृष्टि से नैतिक जीवन व्यतीत करूं और आंतरिक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करूं, और सफल जीवन व्यतीत करके मैं एक समाज के लिए, देश के लिए आदर्श बनकर इस संसार से विदा हूं। ओ ब्रह्म सत्य।